Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
ओम शांति। अभी अभी जो गीत हम सुन रहे थे उसमें कितनी महानतम शिक्षाएं थी, लेकिन प्रश्न ये आता है इस विद्यार्थी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो गीत की टेक थी जिसको अंग्रेजी में बर्डन ऑफ द सॉन्ग कहते हैं कि बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, कुछ कुछ पद गाने के बाद ये बात बार बार दोहराई जाती थी, लेकिन चलते चलते वो शिक्षा कई बार सामने नहीं रहती। अगर वो शिक्षा सदा हमारे संग रह जाए तो वो शिक्षा तो हमें एकदम फरिश्ता बना देने वाली, अव्यक्त स्थिति में ले जाने वाली, और इतनी पावरफुल है, इतनी महान है कि जो पुराना जीवन है उस तरफ मुड़कर भी कोई ना देखे और उसकी कभी याद आएगी भी नहीं। लेकिन जो 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं पुराने, सबसे पहला हिट, सबसे पहला आक्रमण जो वो करते हैं वो यही कि शिक्षा संग नहीं रहती। तो वो शिक्षा क्यों नहीं संग रहती, कैसे वो शिक्षा सदा हमारे संग रहे? यो अगर आप देखें तो ये जो कुमार जीवन है इसकी कितनी महिमा, ये है ही विद्यार्थी जीवन, शिक्षा को सदा संग रखने वाला जीवन। बाबा हमें याद आता है किस प्रकार से बार बार इसकी महिमा करते, कई दफा बाबा मम्मा से तुलना करने करते हुए कहते कि देखो मम्मा बाबा से आगे है। उसका उदाहरण देते हुए बाबा ये कहते कि मम्मा तो उस सीढ़ी से उतरी नहीं जिससे बाबा उतरे और बाबा को फिर चढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा की भाषा तो आप समझते ही हैं, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो बाल ब्रह्मचारी होना ये संसार के एक श्रेष्ठतम सौभाग्य का चिन्ह है। अगर हम ये समझे कि ये हमारी अनमोल निधि है, ये परम सौभाग्य है कि हम कुमार जीवन में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ गए जिसकी सराहना स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा की। भगवान जिस जीवन की महिमा करता है, गार्डी स्टूडेंट इज लाइफ इज द बेस्ट, वो ठीक बात है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में भी जो बाल ब्रह्मचारी के जो जीवन है उससे श्रेष्ठ और कोई जीवन की बात नहीं। तो ये एक हमारे प्लस पॉइंट है, बहुत एक जबरदस्त हमारा फेवरेबल पॉइंट है। लेकिन जैसे कोई सीढ़ी होती है वो सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है, सीढ़ी से उतरा भी जा सकता है, सीढ़ी दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जो हमारा कुमार जीवन है जिसमें एक मुख्य बात है एनर्जी ग्रोथ, क्योंकि जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं, स्वयं भी हम अनुभवी हैं, इस जीवन का जो विशेष एक चिन्ह है, विशेष एक लक्षण है, वो है ये कि ग्रोथ होती है, विकास होता है, शरीर का विकास होता है। जो बचपन और जवानी में एक अंतर है उसमें जो शरीर की कुछ ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का विकास है जिससे मनुष्य के हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी आकृति प्रकृति बदल जाती है, उसका उसके विचारों संस्कारों मस्तिष्क वगैरह पर भी प्रभाव पड़ने लगता है, कुछ उसकी ध्वनि पर, उसके आवाज पर, उसके जीवन के विकास पर, ग्रोथ पर, जिसको एक शब्द में हम कह दें कि उसके प्रभाव पड़ता है, वही जो एनर्जी है वही उसके विकास की सीढ़ी है। और उसी एनर्जी को अगर कोई विकास की सीढ़ी के इस्तेमाल चढ़ने का न प्रयत्न करे तो उतरने और पतन की भी वही सीढ़ी है। संसार में जो मनुष्य पतित है, पतित शब्द विशेष रूप से, वैसे तो कोई भी विकार जिसमें हो वो पतित है, लेकिन जिसमें ये पहला विकार है उसको विशेष रूप से पतित कहा गया। तो वही जो एनर्जी है उस सीढ़ी से अगर कोई चढ़ता नहीं, उतरने लग जाता है, उसी का नाम, उतरने का नाम पतन है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो इसको हम चढ़ने की सीढ़ी के तौर से हमेशा इस्तेमाल करें कि जो हमें इतना सौभाग्य मिला कि इस जीवन में हम आए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो शिक्षा सदा हमारे संग रहे तभी ये हो पाता है। और अगर वो शिक्षा हमेशा हमारे संग ना रहे, फिर स्वाभाविक बात है कि वो जो पुराने संस्कार है, माया के वार है, वो जो पुरानी आदतें हैं, वो मनुष्य को खींच के ले जाती है। तो वो क्या कारण बनते हैं? उसमें हम ये देखे कि इस जीवन में, जो कुमार जीवन में, जहां शरीर का विकास या एनर्जी एनर्जी एक मुख्य गुण है, वहां दूसरी बात हम ये देखे कि इस जीवन में जो दूसरा एक विशेष लक्षण है वो यह है मनुष्य की एम्बिशन, कि हम कुछ ना कुछ कर ले। हर एक व्यक्ति के इस जीवन में कुछ जोश होता है कि हम कुछ करके दिखाएं, समथिंग न्यू, कोई ना कोई ऐसी योजना हम बनाए, कोई ना कोई काम हम ऐसा करें। जहां एनर्जी होती है, एनर्जी को यूज करने की बात आती है, तो हम कुछ करके दिखाएं, इच्छा जिसको कहें हम, एम्बिशन हम जिसको कहें। लेकिन आप देखेंगे कि बाबा के ज्ञान की यही कमाल है कि जहां और बातों में मनुष्यों के मत में और शिव बाबा के दी हुई शिक्षाओं में महान अंतर है, वहां ये इच्छा के बारे में भी अंतर है। जैसे और शिक्षाओं के बारे में जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मनुष्य कहेंगे जगत बना ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, ये जगत तो हमारे सामने है, बना हुआ कैसे नहीं? कल की आयु करोड़ों अरबों वर्ष है, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष है। मनुष्य आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते हैं निर्लेप तो नहीं, लेप से लेप विक्षेप तो आत्मा को लगता है, सारा अंतर है ना। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा क्या कहते रहे कि इच्छाओं का दमन करो, इच्छा जो है उसको दबाने की कोशिश करो। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, इच्छा मात्र अविद्या, बाबा ने भी हमें कहा। लेकिन जब हर एक व्यक्ति संसार में देखता है कि बिना इच्छा के तो कोई कार्य होता नहीं, जब भी मनुष्य का पांव चलता है, जब भी वो कहीं कोई कार्य में लगता है, तो पहले पहले उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वो कार्य करता है। लेकिन इस जो ये कुमार अवस्था है, युवा अवस्था जो है, इसका मैंने आपको बताया कि इसकी एक प्रबल विशेषता ये होती है कि मनुष्य में जो एम्बिशंस है, जो इच्छा है, बड़ी उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और एक नहीं अनेक इच्छा है। ये भी कर डाले, वो भी कर डाले, फला इम्तिहान भी पास कर ले, फला तरीके से पैसा भी कमा ले, फला तरीके से ईश्वरी सेवा भी कर ले, ईश्वरी सेवा ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। कितने प्लान मनुष्य बना लेगा, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अलग बात है, लेकिन बुद्धि चलती है, क्योंकि एनर्जी होती है, माइंड होता है कि हम कुछ करें, हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और इसी से हमारा सौभाग्य बन जाता है। वो तो कहते हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा अगर ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और अगर इस प्रकार की इच्छा हो, लोक सेवा की इच्छा हो, और इच्छा इच्छा को हम इन कामों में लगा दें, तो बाबा कहता है सेवा जो है वो भविष्य का ताज है। जो सेवा का ताज यहाँ पहनेगा, वही भविष्य में विश्व महाराज बनेगा। तो बाबा ने हर एक चीज का सदुपयोग बताया, इच्छा को दबाते क्यों हो, इच्छा खराब नहीं होनी चाहिए। बाबा ने हर एक चीज के लिए बताया कि खराब चीज नहीं होनी चाहिए, उसका रूपांतर करो, वेस्ट को भी बेस्ट बनाओ, बजाय इसके कि उस चीज को ही छोड़ दो। घोड़ा है, घोड़ा चढ़ने के लिए है, अगर आप घोड़े को बांध के टूटे के साथ रख दो और पल्ले से चारा खिलाओ, उसकी सेवा करो, पानी भी पिलाओ, समय पर उसकी मालिश भी करो, वो घोड़े का फायदा क्या हुआ? घोड़े का फायदा तो ये है कि उस पर चढ़ के अपनी मंजिल पर पहुंचो, सिर बांध देने से उसको क्या होगा? तो इच्छा का भी दमन करके बांध के उसको रख दो, दमन कर दो, उसका तो कोई फायदा नहीं। उसका सदुपयोग करो, वो इच्छा एक ऐसी एनर्जी की अभिव्यक्ति है। इच्छा क्या है? जब मरे हुए आदमी को तो कोई इच्छा होती नहीं, इसलिए कहते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जिंदा आदमी में ही कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। तो इच्छा जिसमें है उसमें एनर्जी भी है, अगर एनर्जी भी है और इच्छा भी है तो कुछ कार्य कर लेना जिससे नर्क को स्वर्ग बना दे, हम पतित को पावन बना दे, या संसार में किसी को सुख और शांति उपलब्ध कराने के निमित्त हम बन जाए, तो नथिंग लाइक दैट, इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं। सेवा जिसको हम कहते हैं, सेवा क्या है? इच्छा का ही तो प्रयोग है। सेवा अगर किसी करने की इच्छा ही ना हो तो वो तो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा। जिसको हम सेवा कहते हैं, वो सेवा यही है कि जो लोक कल्याण के लिए हमारी पहले इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा उत्पन्न होगी, जैसे हुआ है ना, फिर ताना मारा जहां होगा मन हमारा वहां होगा, या मन हमारा यहाँ होगा ताना मारा वहां होगा। तो जहां हमारी इच्छा होगी वहां पैसा भी लगाएंगे, मेहनत भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, कुछ करेंगे भी सही, उसी सब का नाम सेवा भी है। तो अगर हम उस इच्छा को दबा दें, तो ये भी इच्छा है, इच्छा को दबाने की भी इच्छा हो सकती है, तो इच्छा तो फिर भी रही, आपने इच्छा को दबा दिया, आपने ये इच्छा की कि मेरी इच्छा ना हो, इच्छा का रूप बदल गया, इच्छा तो नहीं ना। तो वो कहते हैं यू कैन नॉट लिफ्ट द चेयर इन व्हिच यू आर सिटिंग, जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसको तो नहीं उठा सकते ना, मैं नीचे होता हूँ तब उसको उठा सकता हूँ, बैठे हुए तो इसको नहीं उठा सकता। इच्छा को उठाने के लिए भी इच्छा चाहिए, तो इच्छा तो रहेगी रहेगी, तो इसलिए क्यों ना उस इच्छा का सदुपयोग किया जाए। तो ये जो जवानी की उम्र है या कुमार अवस्था है, मैंने बताया, मैंने कई भाई बहन देखे हैं जो ये समझेंगे ज्ञान में आने से पहले एक साल में तीन तीन इम्तिहान पास कर रहे, समझते हैं हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, सर्विस करके आएंगे, समझेंगे ट्यूशन पढ़ा लें, ये भी पैसा कमा लें, यानी एक वक्त में कई कार्य आदमी करके जीवन में आगे बढ़ने की एक कोशिश होती है कि पीरियड ऑफ वर्क है तो यही है। और अभी हमें बाबा ने बता दिया कि ये एनर्जी, एनर्जी तो है मैंने बताया, ये ग्रोथ का पीरियड है और ये सीढ़ी है हमारे चढ़ने की, उसी एनर्जी को हम जब यूज करते हैं सेवा के कार्य में तो वो सफल हो जाती है। उसमें मैंने आपको बताया कि इच्छा ही गिरावट का कारण हो सकती है, इच्छा ही चढ़ने का कारण हो सकती है। घूमने की इच्छा, अच्छा पहनने की इच्छा, भोजन की इच्छा, किसी सुंदर वस्तु को देखने की इच्छा, सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये भी इच्छा है। इस इच्छा के लिए बाबा ने कहा हुआ इच्छा मात्र में विद्या, ये इच्छा जो है ये ऐसी भूल जाए कि जैसे आपको इसका पता नहीं, इसको कहते हैं इनोसेंट बन जाना, इसी का नाम पवित्रता है। जो मन से भी हम पवित्र हो जाए, क्योंकि ये सब मरे पड़े हैं, ये तो मुर्दे हैं, बाबा ने कहा ये कब्र दाखिल है, ये जो चीज भी इन आंखों से दिखाई दे रही है इसका तो विनाश हो जाने वाला है। जब हम बुद्धि से ये बात समझ जाते हैं तो फिर हमें इन चीजों की इच्छा नहीं रहती, हमें एक सूक्ष्म अच्छी चीज की जिससे स्थायी लाभ हो, जिससे कई गुना लाभ हो, इस ज्ञान का मतलब ही है। ज्ञान हम किसको कहते हैं कि जो हमें अच्छाई और बुराई में अंतर बताए, किसमें हमारा लाभ है, किसमें हमारी हानि है, किसमें हमारा कल्याण है, किसमें हमारा अकल्याण है। तो जब ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका पहला प्रभाव, पहला परिणाम, पहला फल उसका ये होना चाहिए कि जो हमारी हानिकारक इच्छाएं थी, अकल्याणकारी जो इच्छाएं थी, वो एक तरह से समाप्त हो जानी चाहिए, और जो हमारी इच्छा है वो एक लोक कल्याणकार, सबका सुख, सबका भला, जिसमें हम कहते हैं समर्पण। समर्पण का भाव क्या, भगवान क्या करेगा हमारे जीवन के समर्पण की, ही डज नॉट रिक्वायर, उसको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम समर्पण किस लिए करते हैं, लोक सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये हमारी इच्छा है, नॉट फॉर मी। वो हवन करते हैं ना, हवन करते हुए हर मंत्र के बाद कहते हैं इधम मग्ना है, इधम दमम, सारा मंत्र पढ़ के कहेंगे इधम मग्ना है, इधम दमम, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। उनका भाव क्या होता है कि ये अग्नि में डालेंगे, अग्नि में डालेंगे तो सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म होकर सारे वातावरण में मिल जाएगा। वैसे तो घी खुद भी पी सकता है आदमी, पिएगा मोटा होगा, जो दो चार आदमी हवन करने वाले बैठे हैं चिमचा चिमचा उनको भी पिला दे काफी है, अग्नि में डालने की क्या अकल है। तो उसकी व्याख्या वो यही देते हैं कि अग्नि में डालने से जो उसका सूक्ष्म रूप हो जाएगा वो वातावरण में मिल जाएगा, और हमारे लिए दूसरों का भला करने की, कल्याण करने की एक भावना आएगी। सिर्फ हम खा जाएंगे, खा सकते हैं, लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा हवा के द्वारा मिल जाए, चाहे उनके फेफड़े में अस्थमा की बीमारी हो जाए, मिल तो जाए। आदमियों को पीने के लिए दूध नहीं आजकल के जमाने में और आग में डाल देते हैं, टाइम है चेंज, लेकिन जो इसके पीछे शुरू में भावना थी वो ये भावना थी। तो बार बार वो यही कहते हैं, अग्नि को भगवान का एक प्रतीक मान के भी वो ये समझते हैं कि भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो हम भी जो समर्पण करते हैं उसका भाव ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो टाइम है, हमारी जो मनी है, हमारा जो भी कुछ है, वट एवर इट इज, ये अब हमारे केवल स्वेच्छा के, स्वार्थ के लिए नहीं, ये सबके लिए है। वो तो गाते हैं जब कोई किसी का सत्संग होगा, प्रवचन होगा, आर्य समाज का, सनातन धर्म का, क्या कहेंगे उसमें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप देखेंगे हर एक सत्संग के बाद यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, ऐसे हो जाएंगे हमारे कहने से सब सुखी हो जाएंगे। अगर हमारे इस तरह से कहने से सुखी हो जाएगा तो मिलियन मिनट पीस की बजाय हम तो यही कहेंगे लोगों को सारे ही एकदम पूर्ण सर्वे भवन्तु सुखिना, फिर हमारा सुख शांति हो जाए। इट कैनॉट बी, ये तो हम कर्मों से गिरे हैं, कर्मों से चढ़ेंगे। मनुष्य गिरा कैसे है, कर्मों से। दुख और शांति किससे मिलती है, बुरे कर्मों से। सुख और शांति कैसे मिलेगी, अच्छे कर्मों से। कर्म कैसे होते हैं, संकल्प से। संकल्प किस तरह से ठीक होंगे, संस्कार ठीक करने से और इच्छा ठीक करने से। उसको ठीक करने से सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाएंगे। कोई जादू का केंद्र तो नहीं, शिव मंत्र तो नहीं ना कोई। तो बाबा ने जो हमें एक बात बताया है, बाबा ने हमें क्या बताया, संसार परिवर्तन का और स्वपरिवर्तन का नियम जो संसार में एक बात किसी ने नहीं आज तक कही, जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी है, जो पहली बार कही गई है, हमारे ज्ञान का जो एक संजय के ऐसा ज्ञान बिंदु है जिसकी उपमा और किसी से किसी भी दर्शन शास्त्र से नहीं हो सकती। संसार में आप जाइए लाइब्रेरी में भरे पड़े, एक मंजिल लाइब्रेरी बनाते हैं वो भर जाती है किताबें, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर डिपार्टमेंट अलग बनाने लग जाते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स, एक पूरा हिमालय पर्वत किताबों का बन सकता है, लेकिन वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ, उससे प्राप्ति क्या हुई? आप ये सोचिए, इतनी बुक्स है कि अगर कोई गिर पड़े और आदमी उसके नीचे आए बचेगा नहीं। भागवत होते आजकल इतनी मोटी मोटी किताबें, 800 पेज की, 1000 पेज की किताबें हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कितनी वॉल्यूम्स है उसकी, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका अमेरिकन कितनी बुक्स है उसकी, पत्थर की बजाय अगर वही किताब किसी को मार दो ना, पक्की बात है मर जाएगा। तो क्या फायदा होगा उसको, उस नाले का फायदा क्या होगा? मरने तो चाहिए थे मन के विकार, वो तो मरे नहीं, और आदमी मर गया पढ़ पढ़ के, उसका सारा दिमाग चाट लिया किताब ने, क्या फायदा होगा उसको? तो बाबा ने एक बात बताई है जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी है, वो क्या है? परिवर्तन कैसे होगा? लोग कहते हैं विश्व परिवर्तन हो जाएगा, इतने बड़े तो देश है, संसार में कितने मनुष्य है, बांध बांध के लोग हैं, माँ की बात बेटा नहीं मानता, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, संसार बदल जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहता है संसार बदल जाएगा, कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। अंग्रेज जाते रहते उनको भगाना पड़ा, और ये कलयुग कैसे चला जाएगा जो इतनी तरह से अड़ा हुआ है? तो उसका तरीका क्या बाबा ने हमें बताया, जिसको हम कहेंगे मोस्ट लॉजिकल, कोई भी उस आदमी उस बात को काट नहीं सकता, अकाट्य प्रमाण, अकाट्य युक्ति जो बाबा ने बताई,